पांचों को संभालती थी। बाबा के अव्यक्त होने से कुछ समय पहले वो पार्टी लेकर बाबा के पास आई थी दिसंबर में, तो बाबा ने उन्हें कहा, बच्ची कुछ दिन यहीं ठहर जाओ। पार्टी चली गई और दादी जी यहीं ठहर गई और दीदी को भेज दिया इलाहाबाद साइड में सेवा केंद्रों पर चक्र लगाने के लिए। ये बहुत बड़ा रहस्य था ड्रामा में, बाबा दादी को यज्ञ के एक एक डिपार्टमेंट में ले जाते थे और उन्हें पूरा परिचित करते थे ये कार्य कैसे चलता है, अनाज का स्टोर कितना रहता है, कहाँ रहता है, पानी का प्रबंध कैसे होता है, बाबा पत्र कैसे लिखते हैं रोज सवेरे सबको, भोजन कैसे चलता है, बाबा कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, सारी कार्य विधि दादी को बाबा ने स्वयं समझाई। जैसे इस रहस्य को कोई जानते नहीं थे, दादी सुनाया करती थी कि मैं सोचती थी बाबा ये सब मुझे क्यों बता रहा है रोज। तो फिर तो जो घटना हुई वो सबको पता है। 18 जनवरी के रात के लगभग 9 बजे और बाबा ने जल्दी ही क्लास पूरी की। आपने सुने होंगे वो महावाक्य, बहुत अच्छी मुरली है 18 जनवरी रात्रि क्लास की, क्योंकि वो एक ही दिन था जब बाबा ने सवेरे क्लास नहीं कराई थी, बाबा की तबीयत ढीली थी। तो क्योंकि तबीयत ढीली थी तो कुछ बहनें बाबा के साथ बाबा के कमरे में पहुंच गई 9 बजे जब बाबा क्लास से आए और बाबा अपनी बेड पर बैठे। और बस कुछ ज्यादा देर नहीं हुई, बाबा ने दादी का हाथ अपने हाथ में लिया, दृष्टि देने लगे और थोड़ी देर में गए। दादियों को कोई इस चीज का अंदाज नहीं था, फील हुआ कुछ हो गया है, फट से डॉक्टर को बुलाया, लेकिन बाबा जा चुके थे। दादी सुनाया करती थी कि बाबा ने अपना हाथ मेरे हाथ में देखकर अपनी शक्तियां मुझे दे दी। और ये बात अव्यक्त बाबा ने बाद में कई बार सुनाई कि बाप ने इस आत्मा को अपनी सारी शक्तियां विल कर दी। देखिए अभी स्थापना के कार्य की जिम्मेदारी बाबा ने दादी को दे दी थी, संसार को बदलने की जिम्मेदारी, युग बदलने की जिम्मेदारी जो ब्रह्मा बाबा संभाल रहे थे वो दादी के हाथों में दे दी। तो बाबा ने दादी को दृष्टि से और हाथ से अपनी शक्तियां और वरदान दे दिए थे। ये दादी बहुत सुनाती थी, क्योंकि मैं तब से ही दादी के साथ हूं, जब से दादी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी मैं भी तब से साथ हूं, यहीं हूं, तो मैंने सब कुछ देखा। दादी सुनाया करती थी कि मेरे अंदर कैसे शक्तियां आ गई, मुझे सब काम सहज लगने लगा और मुझे आभास होने लगा जैसे मैं ये सब करती आई हूं। जैसे दादी जी अभी सुना रही थी स्मृति स्वरूप होना, तो आत्मा को जब स्मृति आ जाती है, बाबा ने भी अभी शब्द बोला मधुबन वालों से मिलते हुए, विजयी, जब अपने विजय होने की हमें स्मृति आ जाती है तो हमारी विजय की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य है, हम सब भी इस बात से सीख लें कि कल पहले की ये स्मृति हम अपने अंदर लाते चलें। जब भगवान ने हमें कह दिया है तुम कल्प कल्प के विजय रत्न हो, तो हमें उसमें संपूर्ण विश्वास कर लेना चाहिए। चिंतन करें सभी, जो भगवान कह रहा है वो संपूर्ण सत्य है या नहीं, स्वीकार करें। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, तो माया पर विजय प्राप्त करना बिल्कुल सहज हो जाएगा। दादी को ये हुआ कि जैसे कल्प कल्प उन्होंने ये काम किया है और अपना कार्य सहज रूप से चालू किया। दादी के बारे में एक विशेष बात जो शायद कम लोग आपको सुनाते होंगे, दादी के गुणों की चर्चा तो बहुत होती है, मैं भी उन तीन गुणों की चर्चा करूंगा जो अव्यक्त बाबा ने उनके लिए कहे थे। लेकिन दादी ने सेवा का विस्तार बहुत किया, बहुत ज्यादा। हम देखते थे दादी कभी स्थूल शब्द बोलूं तो शांत नहीं बैठती थी, इसके वो अर्थ नहीं जो दूसरा होता है, सदा सेवाएं चलती रहें, सदा यज्ञ में कोई ना कोई कार्य चलता रहे, मधुवन में भी चले, सेंटर्स में भी चले, बहुत बहुत कार्य चले। टीचर बहने बैठी हैं, याद होगा जब 67th शिव जयंती थी, तब से कई साल हो गए, शायद 9-10 साल, दादी ने सबको, सब सेंटर्स को चैलेंज दे दिया था, सभी को 67 प्रोग्राम करने हैं। जो उस समय के हैं भाई बहने वो जानते होंगे, बहुत उमंग में ला दिया और उस सेवा से इतना सुंदर प्रभाव रहा कि बहुत जगह गीता पाठशालाएं खुल गई गांव-गांव में, क्योंकि जब 67 प्रोग्राम करने थे तो गांव-गांव में बहुत सारे किए, छोटे-छोटे किए गए और उनका परिणाम बहुत सुंदर हुआ। मुझे याद है यज्ञ में 83 से जब ओम शांति भवन बना और उसकी ओपनिंग हुई तो विश्व सम्मेलनों का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और दादी ने बहुत सुंदर ढंग से उनको आगे बढ़ाया। संत सम्मेलन हुए, सिंधी सम्मेलन हुआ, संत सम्मेलनों का प्रभाव बहुत ज्यादा हुआ। मैं आपको एक कहानी सुना देता हूं, मुझे याद आ गई अभी। हमारे यहाँ सन्यासी महामंडलेश्वर आदि आते नहीं थे, उन लोगों को हमारे बारे में बहुत अच्छी स्पष्टता नहीं थी। तो हरिद्वार के एक प्रसिद्ध महामंडलेश्वर, तत्कालीन भारत के प्रसिद्ध महामंडलेश्वर थे वो स्वामी प्रकाशानंद, मैं भी कभी उनसे मिला था। तो वो अपने शिष्य के साथ पांडव भवन में आ गए। पांडव भवन हमारा छोटा सा होता था, कौन से सन की बात है मुझे ख्याल नहीं, 80 के आसपास की बात है। एक बड़े महात्मा आए हैं, सबने बहुत अच्छी तरह उनको देखा रखा। अब एक कहानी सुनाता हूं बहुत सुंदर। सवेरे दादी जी ने उनको क्लास में बुलवाया और कहा स्वामी जी अपना कुछ अनुभव सुनाओ। तो उसने क्या सुनाया कि आज रात को जब आप सब सो गए तो मैं आपके सारी गलियों में घूमा। उसने गलिया गलिया कहा, पांडव भवन में इधर उधर घूमे तो मैंने क्या देखा कि यहां पर जो गहन शांति है वो देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। देखिए उसने कुछ ज्ञान नहीं सुना, न कोई सुना सकता था उनको ज्ञान, ज्ञान सुनने की वो फीलिंग और वातावरण वहां नहीं था। केवल रात को घूमकर उन्होंने ये महसूस किया और उनका सब कुछ बदल गया। वो ब्रह्मा कुमारी के अगेंस्ट थे, वो सोचते थे ये पता नहीं कौन सा ज्ञान देती हैं, भगवान को सर्वव्यापी नहीं मानती, अपने दादा को भगवान कहती हैं, वो भी सिंधी थे। यहां आके उन्हें स्पष्ट हुआ आपे ही कि दादा को भगवान नहीं कहती, ये निराकार शिव को भगवान कहती हैं। और देखो उसने क्या कहा दादी को, दादी आज से मैं आपका भाई हूं, जब भी आप मुझे 10 पैसे का पोस्ट कार्ड भी लिख दोगी, उन दिन पोस्ट कार्ड 10 पैसे का होता था, मैं भागा चला आऊंगा। और दादी हमारी कितनी चुस्त दुरुस्त, आप देखो, दादी ने फट से मुन्नी बहन को कहा जल्दी जाओ राखी ले आओ, और मुन्नी बहन ने भी तैयार रखी होगी, और बस 5-7 मिनट में ही राखी आ गई। जब तक वो सुना ही रहे थे कुछ कुछ, वो सुना रहे थे कि मैं तो बहुत विरोधी था, बाबा को और दादी को गालियां ही देता रहा, सीधा सीधा सुनाया, मैं तो बाबा को भी गाली दी, दादी जी आपको भी बहुत गाली दी, आज से मैं आपका भाई हो गया हूँ, क्षमा मांगी। इतने में राखी आ गई, दादी ने राखी बांध दी, एक माला गले में डाल दी, एक कंबल भी आ गया, वो कंबल और थोड़े वो उस समय 51 रुपए उनको गिफ्ट भी दे दी गई, कहा बस दादी आज से मैं तो आपका हो गया। और वहां से इन सन्यासियों की बहुत सुंदर सेवा प्रारंभ हुई। उसने जाके अपने फ्रेंड को बताया, दूसरे महामंडलेश्वर थे वो भी फेमस स्वामी वेद प्रकाशन वेद व्यासानंद, फिर वो आ गए। बस इन दो का आना और सन्यासियों की सेवाओं का मार्ग खुलना। दादी बहुत विशाल बुद्धि थी, तुरंत निर्णय होता था, बहुत सुंदर। एक उनके बारे में कहानी मैंने पहले भी सुनाई है, सन्यासियों का एक सम्मेलन हो रहा था मधुबन में, दादी और कुछ बहने भाई सन्यासियों को खुद सारा मधुबन घुमा रहे थे, ओम शांति भवन बन चुका था, सारी परिक्रमा दादियां ही लगवा रही थी। एक सन्यासी जब मेडिटेशन हॉल में जा रहे थे, एक महामंडलेश्वर ने दादी जी का हाथ अपने हाथ में ले लिया, वो भी बुजुर्ग था, हाथ लेकर वो चलने लगा। दादी ने भी कुछ सोचा नहीं, ठीक है इसने हाथ थामा है चलो। जब उसको क्लास में अनुभव सुनाने के लिए कहा गया, हाँ नहीं अपने भाषण में उसने क्या कहा कि आज जब आपका वो योग कक्ष, उन्होंने कहा योग कक्ष देखने हम दादी के साथ जा रहे थे, मैंने दादी का हाथ पकड़ा, मुझे दादी के हाथ से इतने पवित्र वाइब्रेशंस मिले कि मैंने समझ लिया ऐसी पवित्र आत्मा संसार में और कोई नहीं है। देख लें आप, जिसको बाबा ने अपने महान यज्ञ की चीफ बनाया, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटीज ये थी, बहुत विशालता, सबको अपना बनाने का बहुत सुंदर संस्कार, कला और पवित्रता की साक्षात देवी। हम सब ज्ञानी आत्माएं बैठी हैं, जानते हैं संगम युग पर जो आत्मा संपूर्ण पवित्र है वो इस संसार के लिए चमकते हुए पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह है, जिसका प्रकाश इस कलयुग के अंधकार को विलीन कर देता है। तो ऐसी थी हमारी दादी, हम भी उनसे सीखते हैं, बहुत निर्मल स्वभाव, सबको बहुत संतुष्ट करने की इच्छा। जो पुराने भाई बहने हैं जानते होंगे, यहीं पर इस क्लास में जब 20,000 भाई बहने बैठे होते थे तो दादी पूछा करती थी भाइयों से खास, बोलो क्या खाओगे, जो तुम खाओगे वही दादी बनवाएगी। तो मेरे पास कुछ बहुत अच्छे पढ़े लिखे भाई बैठे थे, कहने लगे कि देखो हम तो भाव विभोर हो गए दादी की ये बात सुन के कि 20,000 की सभा में दादी कह रही है प्यार से बोलो क्या खाओगे, मातृत्व का हम भी जानते हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला, हम भी जानते हैं कि 20,000 को मनचाही चीजें नहीं खिलाई जा सकती, पर दादी का दिल तो देखो कितना विशाल है कि सभा में पूछ रही है बोलो क्या खाओगे, दादी वही खिला देगी। तो मुझे याद आ रहा था दादी बाल ब्रह्मचारिणी लेकिन मातृत्व से भरपूर, एक सुंदर बैलेंस, संपूर्ण मातृत्व सभी ने उनके अंदर देखा। हम तो साथ रहे, जब यज्ञ छोटा था तब देखते थे, दादियां जब कपड़े देती थी सबको हमारे यज्ञ में, साल में एक बार सभी को पूरे साल के कपड़े दे दिए जाते हैं, चुराब बनियान सब कुछ एक साथ दे दिया जाता है साल का, अब तक वो रस्म चली आ रही है। तो हम देखते थे कि दादी कैसे सबको संतुष्ट करती है, और कहती थी कि ये लिस्ट आपको दी जा रही है कपड़ों की, किसी को और कुछ चाहिए तो सब पर्ची लिखकर अभी दे दो, वो भी सबको मिल जाएगा। बहुत साल हमने ये देखा कि मुन्नी बहन को सभी पर्ची देते थे और 10-15 दिन के बाद जिसकी जो एक्स्ट्रा डिमांड होती थी वो भी दादी पूर्ण करती थी। ये हम देखते थे दादी में राजाई संस्कार, बहुत राजाई संस्कार, बहुत उदारता, कभी ये दिखाया ही नहीं कि नहीं है। हम तब से देख रहे हैं जब हमारा यज्ञ बहुत साधारण था, धन संपदा ज्यादा नहीं थी, बहुत थोड़ा होता था, तो भी दादी अनेक बार 36 प्रकार के भोजन बनवा देती थी, जो खाए नहीं जाते थे सबको एक एक थैली भी दे दी जाती थी कि सूखा भोजन इसमें डाल के, फ्रूट इसमें डाल के ले जाना, 36 प्रकार के भोजन। राजाई संस्कार, संपूर्ण उदारता, सबको संतुष्ट करने की इच्छा, जैसे आप सब जानते हैं भारतीय इतिहास में इस चीज का बहुत अच्छा वर्णन है कि वो राजा अपने जीवन काल में बहुत सफल हुए जो प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। राजा लोग रात को वेश बदल कर घूमा करते थे कि मेरे राज में कोई भूखा तो नहीं सोता, मेरे राज में रात को कोई रोता तो नहीं। देखिए कितनी सूक्ष्म बात थी भारत के राजाओं की, कोई रोता तो नहीं, क्योंकि अगर कोई रात को रोता है मानो वो दुखी है। राजा सोचता था इसके दुखों का जिम्मेदार भी मैं हूं। यही बात दादी में थी कि उसके यज्ञ में कोई भी असंतुष्ट न रहे। दादी कहा करती थी, भाई मैं अपने परिवार की बड़ी हूँ, मुझे आप सबका ध्यान रहता है, कोई भी रोता है मुझे बहुत फील होता है, इनके लिए मैं क्या करूँ, इनका ये थोड़ा सा भी दुख समाप्त हो जाए। ये राजाई संस्कार, अपने परिवार का संपूर्ण ध्यान रखने की इच्छा। मुझे याद आ रही एक बात, पीछे बाबा ने मुरली में एक बहुत हंसी की बात कही, आप सबने वो सुनी है, अव्यक्त मुरली की बात एक मास पहले की, कि कुछ देवियों के मंदिर ऐसे भी होते हैं, देवताओं के भी, जिनमें पुजारी नहीं होते। किनके मंदिरों में पुजारी नहीं होते? जिन्होंने अपने साथियों को प्यार नहीं दिया। बड़ा सूक्ष्म रहस्य है और हंसी की बात भी है, जिन्होंने अपने साथियों को प्यार नहीं दिया उनके मंदिरों में पुजारी नहीं होते। दादी को बहुत बहुत ध्यान था अपने यज्ञ के लिए, यज्ञ निवासियों के लिए दादी विशेष समय देती थी। सबके लिए कहा हुआ था दादी ने, देखिए बहुत अच्छी बात थी ये, दादी बहुत बिजी रहती थी पार्टियों के साथ भी, कहा हुआ था यज्ञ में कि सवेरे मुरली के बाद आधा घंटा दादी के पास यज्ञ निवासियों के लिए है, जो कुछ भी किसी को कार्य हो इस आधे घंटे में आराम से आ सकते हैं। अलग टाइम तो होता ही था, मुझे तो पहला ही टाइम होता था मिलने का, मुरली के तुरंत बाद में दादी से मिला करता था, कोई भी काम है किचन का वो पूछना होता था, बताना भी होता था। तो दादी ऐसी उदार, अब मैं आपको ले चलता हूँ दादी के उस गुण की ओर जो बाबा ने वर्णन किया था। आप में से दादी के समय जब दादी ने शरीर छोड़ा आपसे 6 साल पहले, जो उस टाइम थे उसके आसपास थे, सुना दिखाना कुछ? हाँ देखिए कुछ सीन आ रहे हैं, आवाज भी।
सेवाधारी भाई आपको जो निर्देश दे उनका पालन करते हुए सही होते हैं। Ready? 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 Ready?
दारी विश्व सारा याद तुमको कर रहा आज दारी विश्व सारा याद तुमको कर रहा प्रकाश स्तंभ से प्रकाश पुंज प्रकाश स्तंभ से प्रकाश पुंज है बिखर रहा आज दानी विश्व सारा याद तुमको कर रहा विशाल संगठन को बांधा एक सूत्र में मानता है मन से विश्व आदर्श रूप में मानता है मन से विश्व आदर्श एकता का बल बही एकता का बल बही हम सबको एक कर रहा आज दानी विश्व सारा याद तुमको कर रहा होगी तुम यहाँ हजारों आए हैं कौन नहीं दिल से तेरे गुंज गुनगुनाए हैं कौन नहीं दिल से तेरे गुंज गुनगुनाए जरा जरा प्रकाशमणि के तेज से सवर रहा आज दादी विश्व सारा याद तुमको कर रहा श्रद्धांजलि की सेवा में सब पार दे सबको जिस तरह दिया वो प्यार का उपहार दे सबको जिस तरह दिया वो प्यार का उपहार दे शरीर भर रहा आज दादी विश्व सारा याद तुमको कर रहा आज दादी विश्व सारा याद तुमको कर रहा प्रकाश स्तंभ से प्रकाश पुंज प्रकाश स्तंभ से प्रकाश पुंज है बिखर रहा आज दादी विश्व सारा याद तुमको कर रहा याद तुमको कर रहा याद तुमको कर रहा। प्रकाश पुंज हो दादी मेरी प्रकाश मणि तुम प्रकाश पुंज हो दादी मेरी प्रकाश मणि पुंज हो प्रकाश स्तंभ पर खड़े सब का ये संकल्प है विश्व का प्रकाश करना काया कल्प है शक्ति की अवतार तुमसे शक्ति मिलती सोगुनी तुम प्रकाश पुंज हो दादी मेरी प्रकाश मणि धारणा की तुम धरा हो सद्गुणों की हो धनी के मुख पे आज एक जिसका बोलबाला है दादी प्रकाशमणि के ये प्रकाश का उजाला है बाबा की मस्तक मणि तभी तो तुम बनी तुम प्रकाश पुंज हो दादी मेरी प्रकाश मणि धारणा की तुम धरा हो सद्गुणों की हो धनी सफर गए तुमने तय
हमारे मध्य से परम पूजनीय दादी जी, जानकी दादी जी, गुलजार दादी जी श्रद्धांजलि देकर के दादी जी कॉटेज की ओर बढ़ गए हैं और अब हमारे ब्राह्मण कुलभूषण होली हंस दादी जी पर प्रकाश स्तंभ पर अपने पुष्पांजलि भेंट करेंगे।
शांति। हाँ, बैठे रहे थोड़ी देर जब तक भीड़ पूरी हो प्रकाश स्तंभ पर। तो मैं आपको सुना रहा था जिन बातों ने हम लोगों को बहुत प्रभावित किया दादी के देह छोड़ने के बाद, बाबा के जो सुंदर संदेश आए थे हमने बहुतों के, जो महारथी दादियां भाई देह छोड़कर गए हैं बाबा के पास, उनके बाद जो संदेश आए बहुत सारे सुने हैं, लेकिन दादी के बारे में जो संदेश आते थे उनसे पता चलता था कि दादी को कितने महान कर्तव्य के लिए बाबा ने कहीं भेजा है। एक बात मैं आप सबको सुनाऊं, आप ये रहस्य जानकर बहुत आनंदित भी होंगे, और कैसे स्थापना के कार्य में बाबा वतन से अपना कार्य करते हैं। तो बाबा तब बार बार ये सुनाया करते थे कि बाबा वतन में विशेष रूप से 5 दादियों को इमर्ज करता है फरिश्ते रूप में, और उन्हें भिन्न भिन्न जगह पर कार्य करने के लिए भेजता है। तो इससे बहुत स्पष्ट होता था कि सूक्ष्म वतन से बाबा का बहुत बड़ा काम संसार को बदलने का चलता है, बहुत बड़ा ये काम है। मैं आपको एक और अच्छी बात सुना दूं इसी संदर्भ में, हम सभी को अपनी स्थिति को बहुत श्रेष्ठ बनाना है। दादी से भी हम यही प्रेरणा लेते हैं। किसी ने मुझे कल बहुत अच्छी एक अनुभव की बात सुनाई, कोई व्यक्ति ट्रक के नीचे आ गया और उसे एकदम दिखाई दिया कि 2 फरिश्ते आ गए हैं उसको बचाने के लिए, और उसे बिल्कुल सेफ निकाल दिया ट्रक के नीचे से, उसे चोट भी नहीं लगी। ये हमारा बहुत बड़ा कार्य है। जो आत्माएं बहुत योगयुक्त रहेंगी, बाबा उनके द्वारा संसार के बहुत बड़े बड़े काम कराता है। तो दादियों के द्वारा, विशेषकर दादी के द्वारा। बाबा वतन में अभी भी बड़े बड़े काम कराता है, हम भी इस कार्य से जुड़ें और अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा बनाएं। दो बातें मुझे दादी के बारे में और आपके सामने रखनी है। एक बात जो बहुत प्रैक्टिकल थी दादी के जीवन से, कि दादी जहां भी चली जाती थी वहां खुशियां ही खुशियां छा जाती थी। हमारे यज्ञ में किसी डिपार्टमेंट में भी दादी जाएगी तो कोई डरेगा नहीं कि भाई चीफ आई है, बड़ी दादी आई है, डर जाएं क्या होगा, कैसे क्या कहेगी दादी, कोई शिक्षा देगी, डांटेगी, ये नहीं। कहीं भी दादी का जाना मानो चारों ओर खुशियों का माहौल बन जाना। किचन में तो बहुत आती थी दादी, बहुत माना, पहले तो रोज ही तीन बार आती थी, फिर थोड़ा दूर दूर होता गया, दो बार हुआ, एक बार रोज आती थी, एक दो बार रोज आती थी। हम देखते थे सभी में जैसे एनर्जी आ गई, सभी में खुशी का एक तरंगे छा गई चारों ओर। तो ये बहुत बड़ी खूबी थी। वो न केवल यज्ञ के एडमिनिस्ट्रेशन की चीफ थी, लेकिन इस विशाल परिवार की भी चीफ थी। दोनों चीजों का बैलेंस, देखिए कार्य चलाना और परिवार का हेड होकर परिवार को प्यार देना। जो भाई भी बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, सोचें इस पर। आप अपने परिवार के काम चलाने वाले हेड भी होते हैं और सबको प्यार देने वाले हेड भी होते हैं, दोनों का सुंदर बैलेंस। कभी कारोबार में किसी को कुछ कहना भी पड़ता है, लेकिन चीफ होने के नाते संगठन को एकता के सूत्र में, प्रेम के धागे में बांध कर रखना होता है। ये कला दादी में बहुत जबरदस्त थी, बहुत खुशी। इसलिए शुरू से ही दादी की प्रसन्नता, चीयरफुल फेस बहुत फेमस था। मुझे बात तो बहुत याद आ रही, पर वो इम्पोर्टेंट बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। बाबा ने दादी के लिए तीन शब्द बोले थे, आप उनसे परिचित हैं, वो मुरलियों में पहले भी आते थे। और फिर दादी के लिए बाबा ने बोले, दादी में संपूर्ण निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मलता थी। तीनों बहुत बड़ी क्वालिटीज हैं। तीनों क्वालिटीज इस महान आत्मा के अंदर आ जाएं, वो तो संपूर्णता की साइन है। मैं अपन पूरी तरह नष्ट हो गया था। हम देखते थे दादी मैं शब्द का प्रयोग भी बहुत कम करती थी। ये नहीं कहती थी मैंने ऐसा कहा, दादी ने ऐसा कहा। कई लोगों का ये प्रश्न भी होता है कि बाबा मुरलियों में हमेशा कहता है बाप तुम्हें कहते हैं, ये नहीं बोलता मैं तुम्हें कहता हूं। तो सोचते हैं कोई तीसरा व्यक्ति कह रहा है बाप तुम्हें ऐसा बोलता है, लेकिन नहीं, बाबा की ये लैंग्वेज थी। बाबा अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग लगभग नहीं करते थे बाप। दादी भी ऐसे ही अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग नहीं करती थी, दादी ने ऐसे कहा। इसका अर्थ ही नहीं दादी और दादी अलग अलग है, एक ही है। तो हमने देखा दादी में बहुत बहुत निमित्त भाव। हमेशा दादी सुनाया करती थी, मैं तो रात को चारपाई पे जाती हूँ 10-10:30 बजे और पता नहीं कब सो जाती हूँ। सोचें आप कितनी निश्चिंतता, बेफिक्र जीवन उनका रहा होगा। नहीं तो इतनी बड़ी संस्था की हेड होकर कई हेडक तो रहते हैं ना, उनको नींद ना आए, उनको चिंता लग जाए। लेकिन नहीं, संपूर्ण निमित्त भाव, बेफिक्र बादशाह। ये हम सबको उनसे सीखना है कि जो कुछ हमारे पास है वो सब बाबा का है। उसने दादी को निमित्त बनाया है तो वही पीछे से शक्तियां देकर संभाल रहा है। ये सूक्ष्म रहस्य हम सबको भी ख्याल में रखना है। जो अपने को तन मन से बाबा को अर्पित कर देते हैं, उनकी बाबा बहुत केयर करता है, उनको बाबा बहुत संभालता है। हम सब के लिए भी ये उतनी ही इम्पोर्टेंट बात है, चाहे आप अपने परिवार को संभालने वाले हैं, बाबा को अपने को संपूर्ण रूप से समर्पित करके मन में निमित्त भाव अपना लें, तो आप देखेंगे बाबा आपके परिवार को भी कैसे संभालता है। दूसरी बात निर्माणता, बहुत निरहंकारिता हमने शुरू से ही दादी के जीवन में देखी। जैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण निरहंकारी थे, वैसे ही दादी में उनके व्यवहार से, उनके बोल से, या वो क्लास में शिक्षाएं भी देती थी हम सबको, कभी ऐसा नहीं लगता था कि कोई भी अहंकार भरा हुआ हो। नहीं तो शब्दों से, चेहरे से, व्यवहार से मनुष्य की हर फीलिंग समझ में आती है। शिक्षाएं भी बहुत प्यार से, क्योंकि हमारे पास यज्ञ में कम से कम मास में एक बार ऐसा क्लास जरूर होता था जिसमें दादी यज्ञ के कारोबार से संबंधित सब बातें करती थी, कहां गलती हो रही है उसको करेक्ट करती थी, किसको क्या करना वो समझाती थी, लेकिन उसमें बहुत प्यार और अपनापन समाया होता था, डांट डपट नहीं, बहुत निरहंकारिता। पर दादी के जीवन में निर्मलता, चित्त निर्मल। निर्मल चित्त का अर्थ होता है सभी के लिए बहुत श्रेष्ठ भावनाएं, क्योंकि वो बड़ी थी। जैसे आज बाबा इस देवियों के गुणों का बखान कर रहे थे, तो जो इस संसार की महान आत्माएं हैं उनकी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए बहुत कल्याणकारी होती हैं, दूसरों के लिए छत्र छाया का काम करती हैं। बहुत निर्मल थी। एक सुंदर सी छोटी कहानी मुझे याद आ गई, दादी से मिलने के लिए दादी के यहीं पर शांतिवन में, दादी कॉटेज में कोई गया, उसको टांग दर्द बहुत था, चला नहीं जा रहा था। वो इस भावना से गया था कि दादी मुझे अच्छी दृष्टि दे दो और मेरी टांग दर्द ठीक हो जाए। और ये बहुत सुंदर चमत्कार था, दादी से वो मिला, दादी ने दृष्टि तो थोड़ी सी दी, उसको केवल भावना थी, उसने दादी को कहा नहीं था। और जब वो बाहर आया तो उसका टांग दर्द गायब हो गया था, वो बड़े आराम से चल रहा था, बड़ा खुश हुआ वो। उसने आकर हमें अपना अनुभव सुनाया, पब्लिक में नहीं सुनाया इसलिए कोई जानता नहीं होगा, पर मुझे अपना अनुभव सुनाया, मैं आज दादी के पास इस भावना से गया था तो दादी में तो बहुत ज्यादा हीलिंग पावर भी है, मुझे तो थोड़ी सी दृष्टि दी और मेरा ये दर्द पूरी तरह लोप हो गया। तो ये सब शक्तियां महान आत्माओं के पास होती हैं। हमारी जानकी दादी भी बहुत बड़ी तपस्वी, आप देख रहे हैं कितनी आयु हो गई है, लेकिन अब भी स्पिरिट कितनी ज्यादा है, आयु को कोई प्रभाव उनकी वाचा पर नहीं है, बहुत एनर्जेटिक, हमें सदा ही कहती है मेरे पास आओ, रू रिहान करो। अब हमें ध्यान भी रखना पड़ता है, दादी जी की तबीयत ढीली, दादी जी बुजुर्ग बहुत हो गई और भी काम रहता है, लेकिन बहुत एनर्जेटिक हैं। ऐसी दादी भी अंत तक बहुत एनर्जेटिक रही, हम सब भी उनसे यही प्रेरणा लेते हैं। और आप सब बहुत प्यार से इस दिवस पर यहाँ आए हैं, तो जरूर आपकी भट्टी जैसी भी हो रही है, बहुत कुछ सीख कर दादी से जाएंगे सभी। कम से कम कोई एक बात दादी से सीख कर जरूर जाना। लास्टली मैं एक बात कहूंगा सभी को, मेरे पास बहुत भाई बहने आते रहते हैं अपनी छोटी छोटी समस्याएं लेकर, मैं आप सभी को एक ही बात याद दिलाऊंगा जो आज तक अनुभव हो रहे हैं, क्योंकि रोज बहुत सारे फोन मुझे आते हैं और समस्याओं के, और रोज कम से कम 2-3 फोन आते हैं जिनकी समस्याएं हल हो गई। गुड न्यूज कि हमारे परिवार में ये समस्या थी, तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा हमारी ईश्वरीय शक्तियां, बाबा की शक्तियां बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। हम अपनी योग की शक्ति को बढ़ाएं, अपने स्वमान को बढ़ाएं, अपनी गुड फीलिंग्स को बढ़ाएं, सभी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। समस्याओं से कभी घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। आज से आप याद रखेंगे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या है, लेकिन उसका समाधान हमारे पास है। हम अपने वाइब्रेशंस को पावरफुल करें। एक छोटे से अनुभव के साथ मैं समाप्त करता हूं। किसी की दुकान नहीं चल रही थी, ग्राहक नहीं आ रहे थे, अभी अभी का समाचार है, और कल ही मुझे गुड न्यूज मिला कि सब कुछ ठीक हो गया है, दुकान नहीं चल रही, ग्राहक नहीं आ रहे। मैंने पूछा योग लगता है? योग नहीं लगता है मेरा। मैंने उसे कहा अपनी दुकान में बैठकर दो स्वमान का अभ्यास सारे दिन करते रहना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ। पूछा कितनी बार करूं? मैंने कहा गिनती न करना, करते रहना। तो कुछ दिन करने के बाद कल उसने न्यूज दिया, मैसेज दिया कि मेरी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी है। मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा, चाहे आपका घर हो, बच्चे, दुकान, बिजनेस सेंटर और कोई फील्ड, उस स्थान के वाइब्रेशंस अगर सुंदर बना दिए जाएं तो वहां की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए अपनी समस्याओं का हल योग से, स्वमान से, ऐशरीरीपन के अभ्यास से, शुभ भावनाओं से करेंगे। हर समस्या का समाधान अपने से बात कर लें, हर समस्या का समाधान मेरे पास ही है, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो दादी के जीवन से कम कोई एक सुंदर बात अपनी इस यात्रा के दौरान लेकर जाना, तो ये यात्रा आपकी सफल हो जाएगी। ओम शांति। अभी सभी योग करके ही उठेंगे। हाँ, योग करके उठेंगे।
आए पर्वत की श्रृंखलाए, आबू की वादी आए पर्वत की श्रृंखलाए, बहते पवन है कहते ये वृक्ष और लताए, सेवाए याद शत प्रणाम तुमको दादी, प्रणाम तुमको शत शत प्रणाम तुमको दादी, प्रणाम तुमको। दिन हो पिताश्री प्रकाश मणि के प्रकाश शत प्रणाम तुमको दादी प्रणाम तुमको।
जो आगे बढ़ रहे हैं कृपया पैरों को गति दें और बढ़ते जाएं। एक ही लाइन के भाई आगे जाएंगे, कृपया दो तीन लाइन न बनाएं। आपके साथ बहने भी हैं, तीन लाइनों में वहां आपको समस्या होगी। आगे बढ़ रही है, कृपया धैर्य का परिचय दें। आपका नंबर शीघ्र आने वाला है। ये ग्रुप आगे बढ़ेगा और उसके बाद भाइयों की पंक्ति छोड़ी जा रही है, पुनः माताएं फिर आगे बढ़ेंगी। कृपया सिक्योरिटी वालों का साथ दें, वो जो कह रहे हैं उसे आप स्वीकार करें।
To me.
होली हंसों का हृदय भावनाओं से भरा है, मौन का सहयोग दें, आगे बढ़ते चलें, भावना के इस पर्व को भावों के साथ निर्वाह करें। कृपया ध्यान दें, जो गाइड भाई बहन कह रहे हैं उनकी बात को सुने और उसी डायरेक्शन प्रमाण आगे बढ़े। बहुत अच्छा किसी ने कहा है, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे जो अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। दादी एक एहसास का नाम है जो प्रकाश सिस्टम में हाजिर है पर दिखाई न दे। आप जितना मौन होकर जाएंगे उतना ही सच्ची श्रद्धांजलि वहां अर्पित कर पाएंगे। भाई लोग बहुत सुंदर तरीके से एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। बहनें तीन की लाइनों में हैं। जगदम्बाओं से निवेदन है कि वो भी एक ही लाइन बनाएं, उन्हें भी सुकून होगा और श्रद्धांजलि आराम से दे सकेंगे। बहनें तीन लाइन न बनाएं, कृपया एक ही लाइन में आएं।
प्यार की गाथा में लहराएं।